प्रणाम, नमस्ते,
नमस्कार।
नमस्कार, नमस्कार इस मास।
एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में अगर कोई एक स्टोरी है जो ह्यूमन प्रिंसिपल्स को सबसे अच्छा समझती है और सबसे ज्यादा रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देती है तुमको मोरालिटी के, तो वो महाभारत। और महाभारत को ऐसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में डालने का हमारा इंटेंशन ये है कि महाभारत इतनी ग्रेट एपिक होने के बावजूद हम लोग की पूरी जनरेशन से इतनी इनएक्सेसिबल है मल्टीपल रीजंस की वजह से कि हम उसके साथ इंगेज नहीं कर पा रहे। जैसे एक रीजन तो ये है कि उसका जो शो है वो इतना पहले बना था कि जिसने अपनी लाइफ में गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया है या जिसने अपनी लाइफ में बेसिकली कोई भी वीएफएक्स देख लिया है वो शो को कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका पीरियड अलग था। ऑल्दो वो शो काफी जीनियस, आज भी अगर तुम वो शो देखते हो तो बहुत अच्छा शो है, बट मैं समझ सकता हूँ कि हमारी जनरेशन उस शो को क्यों नहीं कंज्यूम कर सकती क्योंकि उसमें अच्छे वीएफएक्स नहीं है, लो बजट, मतलब लो बजट दिखता है वो। देयर आर सम शोज दैट जस्ट टर्न येलो विद टाइम, सो दैट इज वन ऑफ द शोज दैट हैज टर्न्ड येलो। सो एक तो वो रीजन हो गया कि जिसकी वजह से महाभारत थोड़ी इनएक्सेसिबल हो गई। दूसरा, ये इतनी लंबी कहानी है कि अपने पेरेंट्स ने जितनी तुमको छोटी स्टोरीज बताई हुई है या तुमको कुछ चैप्टर्स बताया है, एकलव्य की कहानी पता है, तो वो इज नोवेयर क्लोज टू इनकैप्सुलेटिंग द होल एसेंस ऑफ महाभारत। तो महाभारत का एसेंस ये है कि महाभारत कॉज और इफेक्ट की कहानी है, महाभारत केस स्टडी है कैरेक्टर ट्रेट्स की। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनका एक पर्सनल डिफाइनिंग ट्रेट है और उनको फिर एक साथ इंटरैक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया है रियल वर्ल्ड में, और फिर उनके एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से क्या क्या होता है और उससे वो अपने डिफाइनिंग ट्रेट्स के साथ कैसे डील करता है हर कैरेक्टर, उसकी एक केस स्टडी है। इसमें एक सही गलत का क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, जैसे कि रामायण में सारे कैरेक्टर्स थोड़े ग्रे होते हैं बट वो अपने बेसिक डिफाइनिंग कैरेक्टर को कभी डिनाई नहीं करते। एक और प्रॉब्लम इन एक्सेसिबिलिटी का ये है कि महाभारत जो लिखी गई है, जो एक्चुअली इसके ट्रांसलेशन है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है राजगोपालाचारी का, वो ऑल्दो बहुत अच्छे ट्रांसलेशन है और सबको पढ़ने चाहिए, बट दिक्कत ये है कि कोई कोई कुछ भी नहीं पढ़ रहा। मतलब आज के टाइम में कोई, nobody is reading anything anymore, so it's very hard to expect people to read the Mahabharata, kyunki ek stigma against Indian literature or ancient, especially ancient Indian literature, ye bhi hai ki unka wo cool factor nahi hai ki tumhare paas agar tumko life mein ek mahina time diya jaye aur tumko kuch padhne ko bola jaye to tum Game of Thrones padh loge kyunki uski appeal zyada hai, wo uski marketability zyada hai. Tum apne Facebook pe status update dal sakte ho ki maine Game of Thrones padh li.
सोशल कैपिटल ज्यादा मिलता है वेस्टर्न लिटरेचर पढ़ने से, या मोर ओवर इंडियन भी होगा बट महाभारत बहुत नीचे आता है।
महाभारत का सोशल कैपिटल बहुत कम है, महाभारत का शो देखना ही थोड़ा सा वो है, मतलब तुम देख लोगे घर पे बट तुम पब्लिकली उतना उसको स्प्रेड करना, और हमारी जनरेशन में सब कुछ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज ब्लो अप नहीं करती तो उसको कंज्यूम करना पड़ता है, तो एक तो वो स्टिग्मा भी है। तो हम लोगों का इंटेंशन ये है कि हम लोग महाभारत जैसी इतनी एपिक स्टोरी को एक ऐसे फॉर्मेट में डाल दें, पॉडकास्ट फॉर्मेट में डाल दें, जिससे इंडिया की एटलीस्ट जो पॉडकास्ट लिसनिंग जनता है वो कम से कम इसको इसमें इंगेज कर पाए, इसको कंज्यूम कर ले। तो हम लोग का इंटेंशन ये रहेगा, ये स्टोरी हम पूरी एक कॉज एंड इफेक्ट, महाभारत बहुत लंबी स्टोरी है और उसमें इतनी सारी साइड स्टोरीज हैं कि हम पूरी महाभारत ऐसे सुना भी नहीं सकते। तो हमने फोकस इस बात पर किया है कि महाभारत का मेन नैरेटिव आपको एज अ केस स्टडी of cause and effect, और जो उसका major point है, उसका जो main essence है, वो intact रखते हुए महाभारत की पूरी story सुना दे।
मैं ये बोलना चाहूँगा कि story हम चालू कर रहे हैं उससे पहले keep in mind कि ये पूरी story is a strings of metaphor जो कि तुम्हें पूरे एक knowledge और wisdom देने के लिए है। It's बहुत realistic नहीं है और उसको reality से इतना compare ना करे और वो देखे कि इसका deeper meaning क्या है, तो would be a better way to
मतलब ये आप ध्यान में रखेंगे ये 5000 साल पहले हुआ था एक तो, और दूसरा ये इसमें डीफिकेशन बहुत किया गया है, ऐसे नैरेटिव डिवाइसेस यूज किए गए हैं या फिर ऐसा एलिमेंट्स डाले गए हैं जो तुमको सरियल और फिक्शनल लगते हैं, बट उन वो सारे एलिमेंट्स जनरली एक मेटाफर है जो ऐसी चीज पे कॉमेंट करने के लिए जो एक्चुअली तुमको दिख जाएगी। तो तुम इसको थोड़ा एज अ फेरी टेल मत सुनो, इसको एज अ केस स्टडी सुनो, और इसमें जो भी मेटाफर्स हैं उनका एक डीपर मीनिंग है जिसको हम कोशिश करेंगे हर सेगमेंट के बाद एक डिस्कशन करने की, जिसमें हम सारे प्लॉट पॉइंट्स और जो भी मेटाफर्स हैं हम जितना एक्सप्लेन कर पाए वो करेंगे, बट इसको थोड़ा ओपन माइंड के साथ सुनो। तो लेट्स गो। वैसे तो महाभारत की कहानी नैरेटिव में कई जगह से स्टार्ट की जा सकती है, बट इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है वो सबसे अच्छा तब दिखता है जब हम ये कहानी हस्तिनापुर के राजा शांतनु से स्टार्ट करें।
तो हस्तिनापुर नाम का एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है जिसके राजा होते हैं शांतनु। और शांतनु एक दिन गंगा किनारे बैठे होते हैं। जब वो गंगा किनारे बैठे होते हैं तो अचानक से गंगा नदी में से गंगा माता निकलती है। गंगा जो डीटी ऑफ गंगा होती हैं, जो रिवर गॉडेस होती हैं गंगा, वो निकलती हैं। और शांतनु को उनको देख के इमिडिएटली उनसे प्यार हो जाता है। तो शांतनु अपना लव प्रपोज करता है गंगा को और बोलता है कि आप मेरे से शादी कर लीजिए और आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। गंगा उनको बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी बात मान लूँगी, बट तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी और मुझे एक वचन देना पड़ेगा। गंगा शांतनु को बोलती हैं कि तुम मेरे से कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे और मेरे किसी एक्शंस को क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर तुम ये बात मान जाते हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शांतनु चूंकि बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं गंगा के, वो उनकी ये बात मान लेते हैं और गंगा और शांतनु की शादी हो जाती है। कुछ समय बाद गंगा का पहला पुत्र होता है और गंगा उस बच्चे को ले जाकर पानी में डुबो के मार देती है। ये देखकर शांतनु को बहुत दुखी फील होता है, बट चूंकि शांतनु ने वचन दिया होता है कि वो गंगा के किसी एक्शन को क्वेश्चन नहीं करेगा, तो वो कुछ बोलता नहीं है और शांत रहता है। इसी तरह गंगा एक एक करके अपने 7 बच्चों को पानी में डुबो के मार देती है। इस बात से कंटिन्यूसली ये देख के शांतनु को बहुत दुख होता है, बट वो फिर भी कोई सवाल नहीं पूछता। जब 8वें बच्चे की बारी आती है तो गंगा उसको डुबाने के लिए पानी में लेके जा रही होती है, तब शांतनु के सब्र का बांध टूट जाता है और शांतनु गंगा को रोक के उनसे पूछ लेता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो गंगा शांतनु की तरफ देखती हैं और शांतनु से बोलती हैं कि चूंकि तुमने अपना वचन तोड़ दिया और तुमने मेरे से सवाल पूछ लिया है तो मैं तुमको छोड़ कर चली जाऊंगी, बट मैं तुमको बता देती हूं कि इसका रीज़न क्या था। तो गंगा शांतनु को बताती हैं कि 8 वसूस थे देवलोक में, जिनको उनके कुछ बुरे काम की वजह से उनको एक पनिशमेंट ये मिली थी कि उनको पृथ्वी पे मॉर्टल लाइफ जीनी पड़ेंगी। मतलब वो उनको ह्यूमन फॉर्म में पैदा होना पड़ेगा और एक मॉर्टल लाइफ जीनी पड़ेगी पृथ्वी पे, और जब वो मरेंगे तब वो वापस देवलोक में जा सकते हैं। तो वो 8 वसु को गंगा ने ये वचन दिया था कि मैं आपको अपने बच्चों की तरह पैदा करूँगी पृथ्वी पे, और जैसे ही आपकी आपका बर्थ होगा मैं आपको मार दूंगी और आप मरने के बाद इमीडिएटली वापस देवलोक में जा सकते हैं और आपको ये मॉर्टल लाइफ जीकर अर्थ पे इन एगोनी नहीं जीना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपने बच्चों को डुबो डुबो के मार देती थी क्योंकि वो 8 वसूस थे जो मॉर्टल लाइव्स में पैदा हुए थे। गंगा 8वें बच्चे को नहीं डुबाती हैं इसके बाद, और 8वें बच्चे को लेकर शांतनु की लाइफ से चली जाती है। गंगा के जाने के 16 साल बाद शांतनु एक दिन वापस गंगा किनारे बैठे होते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि एक बालक, एक लड़का अपने टीनेज में, वो क्या करता है कि तीर मार मार के गंगा के पानी को रोक देता है। वो गंगा के पानी पे बांध बना देता है तीरों से, और ये स्किल देखकर शांतनु बहुत इंप्रेस होते हैं और वो देखते हैं उसको कि ये इतना मेधावी बालक कौन है। तभी अचानक से गंगा माता वापस प्रकट होती है शांतनु के सामने। शांतनु उनको देख के बहुत खुश होते हैं। गंगा शांतनु को बताती है कि ये बालक कोई और नहीं, तुम्हारा ही पुत्र है, तुम्हारा 8वां पुत्र है, और इसका नाम है देवव्रत, और इसको परशुराम और ऋषि वशिष्ठ ने खुद पढ़ाया है और ये बहुत ही स्किल्ड है इन स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरफेयर, और मैं ये तुम्हारा बेटा तुमको वापस देने आई हूँ। शांतनु देवव्रत को लेकर वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं और हस्तिनापुर को इमीडिएटली देवव्रत से प्यार हो जाता है। सारे साम्राज्य को देवव्रत से बहुत लगाव होता है और देवव्रत बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रिंस बनते हैं। देवव्रत के आने के कुछ समय बाद शांतनु एक बार कहीं जा रहे थे तो उनको अचानक से एक फिशर वूमेन दिखती है जिसका नाम होता है सत्यवती। शांतनु को सत्यवती को देखकर उनसे वापस प्यार हो जाता है और सत्यवती को वो जाके अपना मैरिज प्रपोज करते हैं और बोलते हैं कि सत्यवती तुम मुझसे शादी कर लो। तो सत्यवती बोलती है कि आप राजा हैं, आपकी बात कौन टाल सकता है, और मैं मेरे को इससे कोई आपत्ति नहीं है, बट आपको मेरे पिताजी से परमिशन लेनी होगी। तो शांतनु जाते हैं सत्यवती के पिताजी के पास जो कि एक फिशरमैन होते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है और आप इसकी आज्ञा दें हमें। तो जो फिशरमैन रहता है, जो सत्यवती के पिताजी रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करा तो दूँ सत्यवती से, बट मेरे को एक बात से एप्रिहेंशन है कि मेरी बेटी के जो पुत्र होंगे वो कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देवव्रत तुम्हारा बड़ा बेटा है और देवव्रत का राइट है थ्रोन पे, तो मेरी बेटी के बच्चे कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे, इस बात का मुझे बहुत दुख है, तो इसलिए मैं सत्यवती की शादी तुमसे नहीं करा सकता। शांतनु ये सुन के बहुत दुखी होते हैं और वो अपने बेटे देवव्रत का राइट भी उनसे नहीं ले सकते, तो वो दुख में वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। शांतनु वापस जाने के बाद महल में थोड़े दुखी रहने लगते हैं। एक दिन देवव्रत ये बात नोटिस करता है कि पिताजी आजकल बहुत दुखी हैं, तो वो इसका कारण जानने के लिए शांतनु के रथ चलाने वाले के पास जाता है और उनसे बोलता है कि आपको पता है कि क्या हुआ। तो रथ चालक जो होता है वो देवव्रत को बताता है कि शांतनु सत्यवती के पिताजी से मिलने गए थे। तो देवव्रत डिसाइड करता है कि वो जाके सत्यवती के पिताजी से मिलेगा और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सत्यवती की शादी शांतनु से करा दी जाए। तो वो देवव्रत जाते हैं उस फिशरमैन के पास और उनको बोलते हैं कि आप सत्यवती को मेरे पिताजी से शादी करने की आज्ञा दे दीजिए। तो वो फिशरमैन वापस से वही चीज़ बोलता है देवव्रत को कि जब तक तुम हो तो तुम्हारा पहला राइट है थ्रोन पे, और सत्यवती के बच्चे कभी भी राजा नहीं बनेंगे, इस बात का मुझे दुख है, और इस वजह से मैं सत्यवती की शादी शांतनु से नहीं करा सकता। देवव्रत इस बात को सुनते हैं और अपने पिताजी की खुशी के लिए वो ऐसा वचन दे देते हैं उस फिशरमैन को कि मैं अपना राइट टू द थ्रोन अबैंडन करता हूँ, मैं अपना राइट गिव अप कर देता हूँ और मैं कभी भी क्लेम नहीं करूँगा थ्रोन, तो सत्यवती के जो भी पुत्र होंगे वो अगले राजा बन जाएंगे। बट फिशरमैन को फिर भी एक बात का एप्रिहेंशन रहता है, वो देवव्रत को बोलता है कि आप तो अपना क्लेम गिव अप कर देते हैं बट आपके जो बच्चे होंगे वो हमेशा सत्यवती के बच्चों से बाद में ना लड़ेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? वो अपना क्लेम अगर बाद में मांगने लगे और इस बात से सत्यवती के बच्चों से लड़ने लगे, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय फिर देवव्रत अपने पिताजी की खुशी के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं, इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं जिससे भारत वंश का पूरा इतिहास बदल जाता है। देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, कोई बच्चे पैदा नहीं करूँगा और कभी भी हस्तिनापुर के थ्रोन पे अपना राइट क्लेम नहीं करूँगा। इतनी भीषण प्रतिज्ञा लेने की वजह से अचानक से आकाशवाणी होती है और आसमान से आवाज़ आती है भीष्म भीष्म, और इस प्रतिज्ञा की वजह से देवव्रत का नाम पड़ जाता है भीष्म पितामह। ये प्रतिज्ञा लेने के बाद फिशरमैन फाइनली कन्विंस हो जाता है और सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज देता है शांतनु से विवाह के लिए। देवव्रत सत्यवती को लेकर वापस महल पहुँचते हैं और शांतनु को ये देखकर इतना थोड़ा सा प्राइड फील होता है और थोड़ा सा दुख भी होता है कि मेरी वजह से मेरे बेटे ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ले ली। बट शांतनु भीष्म पितामह की इस कठोर प्रतिज्ञा से इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो उनको एक वरदान देते हैं। वो बोलते हैं कि तुमको आज से इच्छा मृत्यु प्राप्त है, और इच्छा मृत्यु का मतलब ये होता है कि भीष्म पितामह कब मरेंगे ये वो खुद डिसाइड करेंगे। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से मरेंगे, उनको उनकी इच्छा के बिना कोई भी मार नहीं सकता। तो भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है इस वजह से, एंड ही बिकम्स द लेजेंडरी सन ऑफ गंगा हु इज द गॉड फादर ऑफ हस्तिनापुर। सत्यवती और शांतनु की शादी के बाद सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम होता है चित्रांगदा और एक का नाम होता है विचित्रवीर्य। चित्रांगदा की अपने बहुत ही अर्ली ईयर्स में, अपनी काफ़ी यंग लाइफ में उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो किसी एक बैटल में गंधर्व से लड़ रहे होते हैं और गंधर्व में से उस बैटल में उनकी चित्रांगदा की डेथ हो जाती है। तो विचित्रवीर्य नेचुरली राजा बन जाते हैं हस्तिनापुर के। विचित्रवीर्य इज़ अ गुड किंग बट ही इज़ लाइक वेरी सिक यूजुअली, लाइक ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। तो इस बात से भीष्म पितामह और सत्यवती काफ़ी चिंतित रहते हैं कि कहीं विचित्रवीर्य की अगर मृत्यु हो गई बिना किसी पुत्र के तो हस्तिनापुर का थ्रोन अनक्लेम्ड रह जाएगा और हमारे पास कोई प्रिंस नहीं है। तो एक दिन भीष्म पितामह को पता चलता है कि पास के एक किंगडम में काशी के जो राजा हैं वो अपनी तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर करवा रहे हैं, बट हस्तिनापुर को इस स्वयंवर में इन्वाइट नहीं किया होता। तो भीष्म पितामह को इस बात से बहुत क्रोध आता है और वो जाते हैं काशी के राजा के वहाँ जो स्वयंवर हो रहा होता है वहाँ से तीनों राजकुमारियों को, अंबा, अंबिका और अंबालिका को किडनैप कर लेते हैं और वापस हस्तिनापुर आ रहे होते हैं। उस समय के टाइम में अगर किसी की स्वयंवर से कोई क्षत्रिय किसी राजकुमारी को अगवा कर लेता है और सक्सेसफुली वहाँ से किडनैप कर लेता है और अगवा करके चले जाता है तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल मानी जाती थी। तो जब अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर भीष्म पितामह वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक राजा होता है जो स्वयंवर के लिए आया रहता है जिसका नाम होता है शल्व। तो शल्व भीष्म पितामह को रोकने की कोशिश करता है और उनसे बैटल करता है और जिसमें शल्व की हार होती है क्योंकि भीष्म पितामह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो शल्व को हरा देते हैं और फेयर एंड स्क्वायर शल्व को हरा कर अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने रथ में बिठा कर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। हस्तिनापुर पहुँचने के बाद अंबा भीष्म से बोलती है कि आप मेरे को मेरी इच्छा के बिना मेरे स्वयंवर से उठा कर लेकर आए बट मैं राजा शल्व से प्रेम करती हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। तो भीष्म इस बात से कन्विंस हो जाते हैं और भीष्म बोलते हैं कि हाँ आप मुझे माफ़ करें कि मैं आपको ज़बरदस्ती ले आया, और वो अंबा को वहाँ से जाने को बोल देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम शल्वा के पास जा सकती हो। अंबा ये बात सुन के खुश होती है और शल्वा के पास जाती है और शल्वा के कोर्ट में जब वो पहुँचती है तो शल्व क्या करता है कि शल्व अंबा को रिजेक्ट कर देता है। शल्व बोलता है कि मैं भीष्म पितामह से एकदम फेयरली हारा हूँ और ये मेरे प्राइड पे एक कलंक होगा अगर मैं तुमको वापस एक्सेप्ट कर लूँ, मतलब मैं तुमको हार चुका हूँ और अब ये क्षत्रिय ट्रेडिशन में नहीं है कि तुम हारने के बाद कोई चीज़ को वापस एक्सेप्ट करो, और दिस इज़ अगेंस्ट माई प्राइड। तो वो अम्बा को वहाँ से जाने को बोल देते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अम्बा को इस बात से बहुत क्रोध आता है और अम्बा वापस आती हैं भीष्म के पास, और भीष्म को बोलती हैं कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आपने मेरा मेरे को अगवा कर लिया, और अब शलवा ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो अब मैं कहाँ जाऊँ, और अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप मुझसे शादी करिए। तो भीष्म बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, और मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, और ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं होगा, और मैं ये नहीं कर सकता। इस बात सुनने के बाद अम्बा बहुत ही दुखी होती है, और अम्बा डिसाइड कर लेती है कि वो इस अन्याय के लिए भीष्म को ज़रूर पनिश करेगी। तो अम्बा जगह जगह जाती है कोई अपने चैम्पियंस ढूंढने के लिए जो उनकी तरफ से भीष्म से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, बट चूंकि भीष्म इतने लेजेंडरी होते हैं और इतने अच्छे होते हैं वॉरफेयर में कि कोई भी उनसे लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो अम्बा फाइनली परशुराम के पास पहुँचती है। परशुराम अम्बा की व्यथा से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ, और वो डिसाइड करते हैं कि वो अम्बा की तरफ से भीष्म से लड़ेंगे और अम्बा का कॉज चैम्पियन करेंगे। तो वो जाते हैं अम्बा को लेकर भीष्म के पास और उनको चैलेंज करते हैं फाइट के लिए। वो चूँकि परशुराम भीष्म पितामह के पहले टीचर हुआ करते थे, तो उनकी स्किल्स काफ़ी सेम लेवल पे होती हैं, वो काफ़ी मैच्ड फाइटर्स रहते हैं। परशुराम भी उतने ही फियर्स होते हैं जितने भीष्म पितामह होते हैं, तो उनकी जो लड़ाई होती है वो 23 दिन तक चलती है कंटिन्यूसली, और वो चूँकि उनकी स्किल्स एकदम सेम लेवल पे होती हैं उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, और वो 23 दिन तक लड़ाई चलती रहती है कंटिन्यूसली। इवेंचुअली परशुराम को लोग कन्विंस करते हैं कि देखिए भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त है और वो ये लड़ाई हारेंगे नहीं, और आप लोग की स्किल्स एकदम सेम लेवल पे, आप लोग एक दूसरे का एकदम इक्वल मैच हैं वॉरफेयर में, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप गिव अप कर दीजिए। तो परशुराम ये बात मान जाते हैं और परशुराम फाइट गिव अप कर देते हैं, और अम्बा को बोलते हैं कि मेरे से जो मन पड़ा मैंने किया, बट मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, और भीष्म को हराना बहुत मुश्किल है, और अब तुम अपने आप को भीष्म की दया पे छोड़ दो। तो अम्बा इस बात से बहुत दुखी होती है और वो आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और डिसाइड करती है कि एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण वो खुद ही बनेगी। कुछ टाइम किंगडम चलाने के बाद विचित्रवीर्या की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है, और हस्तिनापुर पे पहली बार इतना बड़ा संकट आता है कि ना कोई राजा है और ना कोई प्रिंस है। अंबिका और अम्बालिका के होने के बावजूद विचित्रवीर्या बिना किसी पुत्र के मर जाते हैं, और इस बात से भीष्म पितामह और सत्यवती बहुत चिंतित होते हैं कि हस्तिनापुर में कोई प्रिंस नहीं है और कोई लेजिट हेयर टू द थ्रोन नहीं है। तो सत्यवती कन्विंस करने की कोशिश करती है भीष्म को कि तुम अंबिका और अम्बालिका के साथ इंटीमेट होके पुत्र दो इस साम्राज्य को। भीष्म पितामह इस बात से बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि उनने प्रतिज्ञा ली होती है ऑब्वियसली। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है और हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस समय सत्यवती भीष्म को अपनी जीवन का एक पुराना रहस्य बताती है, बोलती है कि मेरे पास एक, तुम मुझे जज मत करना, बट मेरे पास एक उपाय है इस चीज़ का। सत्यवती भीष्म को बताती है कि उनका एक ऋषि पराशर के साथ एक अफेयर हुआ करता था। पराशर ऋषि उस समय के बहुत लेजेंडरी पोएट थे, और उनके साथ सत्यवती का एक बेटा होता है जिनका नाम पड़ता है वेदव्यास, जो उस समय के सबसे बड़े पोएट और सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते हैं वेदव्यास। और वेदव्यास ने सत्यवती को ये वचन दिया होता है कि आप जब भी मुझे याद करेंगी और आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर प्रकट होऊंगा। तो सत्यवती भीष्म को बोलती है कि हम वेदव्यास को बुलाते हैं, और चूंकि वो फैमिली में ही हैं वेदव्यास को हम बोलते हैं कि वो अंबिका और अम्बालिका के साथ हस्तिनापुर को पुत्र दें। तो वेदव्यास को बुलाया जाता है। वेदव्यास जब आते हैं तो वेदव्यास इज़ नॉट अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन। वेदव्यास इतने बड़े स्कॉलर होते हैं बट ही इज़ नॉट वेरी वेल केप्ट और ही इज़ नॉट वेरी नाइस टू लुक एट। चूंकि अंबिका और अम्बालिका राजकुमारियाँ होती हैं, वो वेदव्यास को देखकर थोड़ी सी डर सी जाती हैं और सहम जाती हैं, और उनके इस डर की वजह से भारत वंश की हिस्ट्री बदल जाती है। वेदव्यास जब अंबिका के रूम में जाते हैं तो अंबिका वेदव्यास को एक्सेप्ट तो करती हैं, बट अंबिका जब वेदव्यास के साथ इंटीमेट हो रही होती है तो वो अपनी आँखें बंद कर लेती हैं। तो वेदव्यास जब कमरे से बाहर आते हैं और सत्यवती को बताते हैं कि जो भी अंबिका का पुत्र पैदा होगा वो अंधा पैदा होगा क्योंकि अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो सत्यवती को इस बात से चिंता होती है कि कोई अंधा राजा कैसे बन सकता है। तो वो अंबालिका के पास जाती हैं और अंबालिका को बोलती हैं कि वेदव्यास जब तुम्हारे पास आएँ तो तुम आँखें बंद मत करना अपनी। तो वेदव्यास अंबालिका के रूम में जाते हैं, अंबालिका चूँकि उनको बोला गया होता है तो वो अपनी आँखें तो बंद नहीं करती, बट जब वो लोग इंटीमेट हो रहे होते हैं तो अंबालिका डर के मारे सहम जाती हैं और उनकी बॉडी टर्न्स पेल। तो वेदव्यास फिर बाहर आते हैं और सत्यवती को बताते हैं कि अंबालिका का जो पुत्र होगा वो बहुत ही सिकली और पेल पैदा होगा। तो सत्यवती इस बात से भी थोड़ी नाखुश रहती हैं, तो वो वापस अंबालिका के पास जाती हैं और अंबालिका को बोलती हैं कि हम वेदव्यास को तुम्हारे पास वापस भेजेंगे और इस बार आँखें भी बंद मत करना और डरना मत। तो अंबालिका को ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगती, तो वो क्या करती है कि अपनी जगह अपनी एक दासी को जिसका नाम पूर्णा होता है उसको तैयार करके अपनी जगह पे अपने रूम में छोड़ देती है जब वेदव्यास आते हैं। तो वेदव्यास आते हैं और चूंकि पूर्णा ये राजकुमारी नहीं होती तो वो होल हार्टेडली वेदव्यास को एक्सेप्ट करती है और पूर्णा का जो पुत्र वेदव्यास से होता है उसका नाम पड़ता है विदुर। अंबालिका का जो पुत्र होता है जो प्रोफेसाइज्ड होता है कि ये पेल पैदा होगा और सिकली होगा उनका नाम पड़ता है पांडु, और अंबिका के जो नेत्रहीन पुत्र पैदा होते हैं उनका नाम पड़ता है धृतराष्ट्र। तो इस तरह हस्तिनापुर को दो हेयर टू द थ्रोन मिलते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु, और उनका एक तीसरा भाई होता है विदुर जो डायरेक्ट क्लेम टू द थ्रोन जिनका नहीं होता है क्योंकि वो एक दासी के पुत्र होते हैं, बट विदुर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा वाइज एंड ही टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट लर्नेड पर्सन। वो इतने लर्नेड और इतने वाइज थे कि उनको कहा जाता था कि ये खुद यम भगवान जो हैं, जो धर्म के भगवान हैं, उनका अवतार हैं। धृतराष्ट्र और पांडु में से धृतराष्ट्र चूँकि बड़े होते हैं तो उनको हस्तिनापुर का राजा बना दिया जाता है, बट चूँकि वो नेत्रहीन होते हैं तो बिहाइंड द सीन्स पांडु और विदुर ही पूरा राज काज संभाल रहे होते हैं, बट धृतराष्ट्र राजा होते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु में एक हल्की सी सटल राइवलरी भी होती है जो विदुर नोटिस करते हैं, बट सारा कामकाज विदुर और पांडु ही मिलकर चलाते हैं राज का। धृतराष्ट्र की जब शादी की उम्र होती है तो भीष्म पितामह राजा गांधार की बेटी गांधारी से उनकी शादी की बात करते हैं। जब गांधार के राजा को ये बात पता चलती है कि धृतराष्ट्र नेत्रहीन है और वो देख नहीं सकते तो उनको इस बात का थोड़ा दुख होता है कि जब इस साम्राज्य में पांडु भी हैं तो मेरी बेटी की शादी अंधे राजा से क्यों कराई जा रही है। बट गांधारी इस समय सबको शॉक कर देती हैं जब वो ये बोलती हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि मेरे पति ब्लाइंड होने वाले हैं और मुझे इस बात से कोई इस बात का कोई दुख नहीं है और मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, और चूँकि मेरे हस्बैंड ब्लाइंड हैं तो मैं भी ये डिसाइड किया है मैंने कि मैं भी अपनी आँखों पे पट्टी बांध लूँगी और उनके हैंडीकैप की रिस्पेक्ट में मैं भी अपनी देखने की शक्ति गिव अप कर देती हूँ। तो गांधारी का जो भाई होता है शकुनी वो इस बात से बहुत दुखी होता है, उसको लगता है कि हमारे परिवार के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि एक नेत्रहीन राजा के साथ मेरी बहन की शादी करा दी गई, और वो मन ही मन ये ठान लेता है कि मैं इस परिवार से इनसे बदला ज़रूर लूँगा। तो शकुनी को एक हेट्रेड रहती है धृतराष्ट्र और ये कुरु फैमिली के वध की तरफ। मीनवाइल पांडु की शादी की जाती है कुंती और माद्री से। पांडु की दो वाइफ्स होती हैं, एक का नाम होता है कुंती और एक का नाम होता है माद्री। पांडु एक बार जंगल में शिकार करने गए होते हैं, तो वो शिकार कर रहे होते हैं तो वो एक तीर मारते हैं ये सोच के कि हिरन है, और वो हिरन को तीर मारते हैं और जब पास जाके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो हिरन नहीं था, वो एक ऋषि थे जो हिरन के वेश में अपने लवर के साथ वहाँ पे इंटीमेट हो रहे थे। तो ऋषि को इस बात से इतना क्रोध आता है कि मुझे तीर मार दिया कि वो पांडु को एक श्राप दे देते हैं। वो पांडु को श्राप देते हैं कि तुम जब भी अपनी लाइफ में किसी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस श्राप की वजह से पांडु बहुत ही दुखी होते हैं और पांडु अपना रॉयल लाइफस्टाइल गिव अप करके हर्मिटेज में जंगल में रहना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वाइफ्स कुंती और माद्री के साथ। और उनको इस बात का बहुत दुख होता है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और हमारा लीनियज यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इस समय कुंती आती हैं पांडु के पास और कुंती बोलती हैं कि मैं आपको एक अपने जीवन का रहस्य बताना चाहती हूँ, और वो उनको एक ऐसा सीक्रेट बताती हैं जिससे देवताओं को धरती पे आना पड़ता है। शूरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे जो श्री कृष्ण के ग्रैंडफादर भी थे, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रथा। अब शूरसेन के एक कज़िन होते हैं जिनका नाम होता है कुंती भोज, उनके खुद के कोई बच्चे नहीं होते, तो शूरसेन अपनी बेटी प्रथा को कुंती भोज को दे देते हैं और प्रथा कुंती भोज की देखरेख में पड़ी होती है। तो जब प्रथा कुंती भोज के पास जाती है तो प्रथा का नाम कुंती पड़ जाता है, और कुंती जब वहाँ पर बचपन में कुंती भोज के साम्राज्य में बड़ी हो रही होती है तो एक बार क्या होता है कि एक ऋषि होते हैं दुर्वासा, तो दुर्वासा कुंती भोज के साम्राज्य में और उनके किंगडम में आने वाले होते हैं। बट ऋषि दुर्वासा के बारे में ये बात बहुत फेमस रहती है कि ऋषि दुर्वासा को अपने क्रोध पे पूरा कंट्रोल नहीं है, तो वो लेफ्ट राइट सेंटर सबको श्राप देते हुए चलते हैं। इस वजह से ऋषि दुर्वासा से सब लोग बहुत डरते हैं, तो वो उनसे हमेशा दूरी बना के रखते हैं और थोड़ा उनके साथ मतलब थोड़े रिजर्व ही रहते हैं उनके सामने। बट कुंती चूँकि उस समय बच्ची रहती है, तो जब ऋषि दुर्वासा आते हैं कुंती भोज के किंगडम में, तो कुंती उनके साथ बहुत ज़्यादा मिंगल करती है और उनका बहुत ख्याल रखती है, उनकी सेवा करती है और उनके साथ एक बहुत प्लेफुल रिलेशनशिप रहती है ऋषि दुर्वासा के साथ। तो जब ऋषि दुर्वासा वहाँ से जा रहे होते हैं, तो उनका कुंती के साथ एक ऐसा बॉन्ड बन गया होता है कि वो कुंती को एक वरदान दे के जाते हैं। बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, और इस मंत्र का तुम जब भी यूज़ करोगी या इस मंत्र का जब भी तुम उच्चारण करोगी, तो देवता एक देवता तुमको दर्शन देने धरती पर आ जाएंगे। तो ये मंत्र वो कुंती को बताकर वहाँ से चले जाते हैं। जब ऋषि दुर्वासा वहाँ कुंती भोज के किंगडम से जा चुके होते हैं और उनके जाने के कुछ टाइम बाद, कुंती इस बात से क्यूरियस होती है कि ये मंत्र सही में काम करता है कि नहीं, तो वो इन जेस्ट ऐसे प्लेफुली ये मंत्र का प्रयोग कर लेती है और उनके सामने सूर्य देवता प्रकट हो जाते हैं। अब ऋषि दुर्वासा ने कुंती को ये बात नहीं बताई थी कि जब तुम इस मंत्र का प्रयोग करोगी तो जो देवता आएंगे वो तुमको अपना पुत्र देकर जाएंगे, वो तुमको एक अपना डेमी गॉड पुत्र देंगे। तो सूर्य देवता जब प्रकट होते हैं, तो सूर्य देवता कुंती को एक पुत्र देते हैं और एक बच्चा देते हैं। वो बच्चा कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ होता है और उसके बॉडी में से रेज एमिनेट कर रही होती हैं और वो बहुत ही गॉडली चाइल्ड होता है। बट चूंकि कुंती उस समय अपने टीनेज ईयर्स में होती हैं और उनकी कोई शादी भी नहीं हुई होती, तो वो उस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तो वो क्या करती हैं कि एक टोकरी में उस बच्चे को डालकर एक नदी में बहा देती। फिर ये बात जब ये अपनी पूरी हिस्ट्री जब कुंती पांडू को बताती हैं, और पांडू को ये बात नहीं बताती कि उन्होंने इस मंत्र का पहले भी प्रयोग किया हुआ था और उनका एक ऑलरेडी पुत्र है, ये बात वो पांडू से छुपा के रखती हैं। बट उन पांडू को वो अपने वरदान के बारे में बता देती हैं और वो बोलती हैं कि मैं इन मंत्र का यूज़ करके आपको पुत्र दे सकती हूँ। तो पांडू इस बात से बहुत खुश होते हैं और पांडू कुंती और माद्री को बोलते हैं कि तुम लोग इस मंत्र का प्रयोग करो और हमारी लीनियज को प्रिंस दो। कुंती पहली बार इस मंत्र का प्रयोग करती हैं तो यम देवता, जो धर्म के देवता हैं, वो प्रकट होते हैं उनके सामने और उनको एक पुत्र देते हैं जिसका नाम पड़ता है युधिष्ठिर, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव होते हैं। फिर उसके बाद कुंती इस मंत्र का वापस से प्रयोग करती हैं और वायु देवता प्रकट होते हैं और वायु देवता उनको एक पुत्र देके जाते हैं जिनका नाम पड़ता है भीम, वायुपुत्र भीम। और फिर तीसरी बार जब कुंती इस मंत्र का प्रयोग करती हैं तो इंद्र देवता प्रकट होते हैं और इंद्र देवता कुंती को एक तीसरा बच्चा देके जाते हैं जिसका नाम पड़ता है अर्जुन। ये तीन पुत्र होने के बाद जब कुंती ये मंत्र माद्री को बताती है, तो माद्री भी इस मंत्र का प्रयोग करती हैं और माद्री के सामने प्रकट होते हैं अश्विन ट्विंस। अश्विन ट्विंस देवलोक के दो देवता हैं जो ट्विंस रहते हैं, तो वो माद्री को दो बच्चे, ट्विन बच्चे देकर जाते हैं जिनका नाम पड़ता है नकुल और सहदेव। एक बार वसंत के मौसम में पांडू अपनी ह्यूमन डिज़ायर्स को सकम कर जाते हैं और वो माद्री के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, तो माद्री उनको वॉर्न करती है कि आपको ये श्राप जो मिला हुआ है वो इफेक्ट में आ जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। बट पांडू अपने आप को रोक नहीं पाते और माद्री के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो जब पांडू की मृत्यु हो जाती है तो माद्री इस बात के लिए खुद को बहुत ब्लेम करती है और बहुत गिल्टी फील करती हैं। तो जब पांडू का अंतिम संस्कार होता है तो वो अपने आप को उस उनकी चिता के साथ सती कर लेती हैं। तो इस तरह से पांडू और माद्री की मृत्यु हो जाती है और पाँचों पांडव कुंती की देखरेख में फिर बड़े होते हैं। फिर कुंती माद्री के भी बच्चों को अपने बच्चों जैसे ही ट्रीट करती हैं और ये पांच पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव कुंती की देखरेख में बड़े होते हैं। जब माद्री और पांडू की मृत्यु हो जाती है तो जो जंगल के जो ऋषि मुनि रहते हैं जहाँ पे ये लोग रह रहे होते हैं, पांडू, उनकी वाइफ और उनका पूरा परिवार, वो पांडवर्स और कुंती को लेकर वापस हस्तिनापुर जाते हैं और उनको भीष्म को इंटरेस्ट कर देते हैं। और उस समय युधिष्ठिर की उम्र 16 साल की थी और ये लोग वापस हस्तिनापुर पहुँचते हैं। विदुर, भीष्म, व्यास, धृतराष्ट्र और घर के सारे बड़े, हस्तिनापुर के सारे बड़े पांडू का अंतिम संस्कार करते हैं। और उस समय वेद व्यास सत्यवती को ये बात बताते हैं कि सत्यवती, आज के बाद इस साम्राज्य में सब कुछ डाउनहिल है, मतलब आज के बाद बहुत विकट कठिनाइयाँ आने वाली हैं और तुमसे ये देखा नहीं जाएगा, तो तुम संन्यास ले लो और चली जाओ। तो सत्यवती अंबिका और अंबालिका को लेकर संन्यास ले लेती हैं और जंगल में रहने चली जाती हैं। जब कुंती और पांडु जंगल में रह रहे होते हैं और जब उनके ये पांडव पुत्र सारे पैदा होते हैं, तो ये बात गांधारी को भी पता चलती है, और गांधारी और धृतराष्ट्र को इस बात की चिंता होती है कि हमारे कोई बच्चे नहीं हैं और पांडु के 5 बच्चे हो गए हैं, तो हमें कंजुमेट करनी चाहिए अपनी मैरिज, और गांधारी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। गांधारी जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो बहुत बुरा टाइम जाता है, उनको पूरे टाइम बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और उनका टाइम बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं होता, उनको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। उस समय कहते थे कि जो तुम्हारी प्रेगनेंसी जैसी भी जाती है उसी उसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे बच्चों में भी दिखता है, और गांधारी की प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही ख़राब टाइम होता है उनकी लाइफ। फिर जब फाइनली गांधारी गोज थ्रू चाइल्ड बर्थ, जिस दिन वो हो रहा होता है वो रात अमावस्या की रात होती है, और बहुत ही मतलब माहौल मतलब पूरा मौसम ख़राब हो जाता है और सब कुछ एक थोड़ा ग्रिम हो जाता है, और वो जब चाइल्ड बर्थ के थ्रू जा रही होती है तो दैट प्रोसेस इज द वर्स्ट पीरियड ऑफ गांधारीज लाइफ, इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ गांधारीज लाइफ। और जब वो बर्थ देती हैं तो कोई बच्चा पैदा नहीं होता, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट्स जस्ट अ लंप ऑफ मास दैट इज़ बॉर्न आउट ऑफ गांधारी। ये देखकर गांधारी और धृतराष्ट्र बहुत दुखी होते हैं, और गांधारी को ये पहले वरदान मिला होता है कि उनके 100 पुत्र होंगे, तो इस बात से वो बहुत चकित होते हैं कि ये कैसे हुआ और ये हाउ इज़ दिस जस्ट अ लंप ऑफ मास। तो वेद व्यास को बुलाया जाता है, तो वेद व्यास गांधारी को बोलते हैं कि अगर ये तुम्हें वरदान मिला है कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे तो तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। तो वो क्या करते हैं कि वो जो लंप ऑफ मास है उसको 101 टुकड़ों में बांटते हैं और उनको अलग अलग मटकों में रख देते हैं इनक्यूबेट होने के लिए। जब वो मटके में सारे कौरव धृतराष्ट्र के बच्चे इनक्यूबेट हो रहे होते हैं, तो इसमें से जो पहला मटका फूटता है उसमें से निकलता है दुर्योधन। तो जब दुर्योधन पैदा होता है तो सबको दिख जाता है, सारे लोग जो उस मिनिस्टर्स होते हैं और जो सारे वहाँ पे लोग होते हैं उनको ये दिख जाता है कि ये कुछ बहुत ईविल हुआ है, इट्स द एम्बॉडीमेंट ऑफ ईविल इज़ बॉर्न ऑन अर्थ। वो देख के उनको ये लग जाता है कि आज कुछ ईविल हुआ है, बट द किड्स आर ऑल द कौरवाज जो बाद में पैदा होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन होता है और एक दुशासन होता है और 98 अदर ब्रदर्स होते हैं और एक बहन होती है उनकी, तो उनको धृतराष्ट्र और गांधारी उतना ही प्यार देते हैं जितना किसी नॉर्मल बच्चों को दिया जाए, क्योंकि बट दीज वर किड्स दैट कुड ओनली बी लव्ड बाई ब्लाइंड पेरेंट्स, बट दिस वॉज एविडेंट टू एवरी वन। बट कोइंसिडेंटली इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेटाफर्स ऑफ द महाभारत, देयर पेरेंट्स वर एक्चुअली लिटरली ब्लाइंड। कौरव और पांडव दोनों काफ़ी खुशी खुशी बड़े होते हैं हस्तिनापुर में, बट इन सारे कौरव और पांडव में से मिला के भीम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मतलब उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई मैच नहीं होता। तो भीम थोड़े बुली टाइप के होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कौरवों को बहुत बुली करते हैं, दुर्योधन को बार बार उठा के पटक देते हैं, और वो ऐसे ऐसे खेल खेलते हैं कि जब दुर्योधन और कौरव पेड़ पे चढ़े होते हैं तो वो पेड़ को हिला के उनको गिरा देते हैं, और मतलब कौरव कंटिन्यूसली बुली होते हैं भीम से। तो दुर्योधन के मन में एक अलग ही नफरत और घृणा पैदा हो जाती है भीम के लिए, क्योंकि वो पूरे टाइम उनकी बॉडी पे ब्रूजेज होते हैं और ऐसा, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भीम की ज़्यादा होती है, तो वो काफ़ी बुली करते हैं कौरवों को। तो दुर्योधन इस बात से काफ़ी दुखी रहते हैं कि ये जो पांडव हैं इनका माहौल बहुत ज़्यादा है, चूँकि ये देवताओं के बच्चे हैं और सब जगह इनकी ही वाहवाही हो रही है और ये लोग इतने ब्रिलियंट हैं, तो उनको इस बात का डर रहता है कि मेरे पिताजी भी ब्लाइंड हैं तो ये किंगडम कहीं इसके बाद युधिष्ठिर के पास ना चली जाए। और टेक्निकली वैसे भी पांडु ने ही पूरा साम्राज्य चलाया था उनकी मृत्यु के पहले, उनके जंगल जाने से पहले, तो और सब लोग युधिष्ठिर को अपना राजा मान चुके होते हैं, मतलब सारा साम्राज्य समझ रहा होता है कि हाँ युधिष्ठिर ज़्यादा केपेबल है राजा बनने के लिए। तो दुर्योधन को इस बात से भी थोड़ी सी घृणा रहती है पांडवों से कि कहीं ये मेरा राज ना हथिया ले मेरे से। तो दुर्योधन एक बार ऐसा प्लान बनाता है कि वो भीम को मार देगा, तो वो क्या करते हैं, कौरव और पांडव गंगा के किनारे खेलने जाते हैं और भीम के खाने में कुछ जहर मिला देते हैं, नींद की दवाई मिला देते हैं दुर्योधन, और बोल और जब भीम को नींद आ जाती है और भीम गंगा के किनारे सो जाते हैं, तो और सब लोग सो रहे होते हैं, तो दुर्योधन उठ के भीम को ढकेल के पानी में गिरा देते हैं और ये सोचते हैं कि ये डूब के मर जाएंगे, और उनके हाथ पैर भी बांध देते हैं और फिर पानी में गिरा देते हैं। तो उसके बाद जब सुबह सब लोग उठते हैं तो वो सब लोग वापस जा रहे होते हैं, तो युधिष्ठिर को नोटिस करते हैं कि भीम नहीं दिख रहे और भीम कहाँ है, तो वो दुर्योधन से पूछते हैं कि भीम को कहीं देखा क्या, तो दुर्योधन बोलते हैं कि वो भीम तो ऑलरेडी हस्तिनापुर चले गए और महल में होंगे वो, और हम लोग वापस चलते हैं। तो ये लोग वापस जाते हैं और युधिष्ठिर जब वापस पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि भीम तो यहाँ पे भी नहीं है, तो वो लोग काफ़ी चिंतित होते हैं, उनको लगता है कि भीम की मृत्यु हो गई। बट मीनवाइल भीम जब पानी में डूब रहे होते हैं तो अचानक से उनको एक सांप काट लेता है, तो उस सांप को जो पॉइजन होता है वो पॉइजन उनके खाने में जो पॉइजन मिला था उसको काउंटरैक्ट कर जाता है और उनकी नींद खुल जाती है पानी के अंदर। तो अपनी चूँकि वो बहुत पावरफुल होते हैं तो वो अपनी रस्सियाँ वस्सियाँ तोड़कर पानी में से निकलते हैं और वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। जब वो वापस हस्तिनापुर आते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं कि वह भीम लौट आए। और भीम जब वापस आते हैं तो कहा जाता है कि भीम के पास और भी उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है, मतलब उनके पास अब 10,000 हाथियों जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और भीम को अब अपने अगेंस्ट जो भी प्लॉटिंग हो रही होती है पांडवों के अगेंस्ट, वो पांडवों के प्रति ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और उनको ये सारी प्लानिंग और सारा इल विल जो पांडवों के अगेंस्ट होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाता है। भीम के वापस आने के बाद भी कुंती को थोड़ा सा सस्पिशन रहता है कि ये दुर्योधन का ही किया धरा था, और दुर्योधन पांडवों से बहुत नफरत करता है और ये बार बार ऐसी हरकतें करते रहेगा। तो वो विदुर को जाके बताती हैं कि मुझे इस बात का सस्पिशन है कि दुर्योधन ने ही कुछ गड़बड़ किया था। बट विदुर बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को बहुत ही लंबी उम्र प्राप्त है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पांडव और कौरव जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो अपने हथियार चलाने की सारी विद्या और स्टेट अफेयर्स की सारी विद्या कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से लेते हैं और उनके अंडर पढ़ाई करते हैं। जब वो एक सर्टेन एज के हो जाते हैं तो एक दिन डिसाइड होता है कि इनकी शक्ति प्रदर्शन के लिए और इनकी सारी स्किल्स के डेमोंस्ट्रेशन के लिए सारी रॉयल फैमिलीज़ को और सारी हस्तिनापुर की जनता को बुलाया जाएगा और एक डेमोंस्ट्रेशन स्टेज किया जाएगा जहाँ पर ये लोग सारे प्रिंस जो हैं हस्तिनापुर के वो अपने अपना स्किल्स डेमोंस्ट्रेट करेंगे। तो इस पूरे इवेंट में अर्जुन सुपर ह्यूमन स्किल्स अपनी प्रेजेंट करते हैं और सब लोग बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं कि अर्जुन तो अलग ही लेवल पे आर्चरी के मास्टर हैं और अर्जुन का बहुत नाम होता है। दुर्योधन को इस बात से देख के थोड़ी सी जलन होती है अंदर ही अंदर कि अर्जुन को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है। तभी अचानक से जनरल क्राउड में से एक लड़का निकलता है और वो देखने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एक यूथ निकल के आता है और वो कवच और कुंडल पहना हुआ होता है उसने, और कुंती ये देखकर एकदम से अचानक से बेहोश हो जाती हैं। वो लड़का आगे आता है और अर्जुन से जाके बोलता है कि मेरा नाम कर्ण है और मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि तुमने जो भी यहाँ पे अपनी स्किल्स डेमोंस्ट्रेट की हैं वो सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ और तुमसे बेटर कर सकता हूँ। तो ये बात सुनकर द्रोणाचार्य उनको आज्ञा दे देते हैं कर्ण को कि ठीक है तुम डेमोंस्ट्रेट कर सकते हो। तो कर्ण वो सारी चीज़ें जो अर्जुन ने की होती हैं वहाँ पे अपनी जो सारी स्किल्स डेमोंस्ट्रेट की होती हैं वो सारी चीज़ें कर्ण रिपीट कर देता है और अर्जुन से बेटर करता है और अर्जुन से ज़्यादा ईज के साथ करता है। तो सब लोग अचानक से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और दुर्योधन स्पेशली अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि ऐसा कोई बालक आया और पहला कोई ऐसा इंसान उसको दिखाया जो अर्जुन से भी ज़्यादा स्किल्ड है। तो ये देखकर दुर्योधन के मन ही मन में ये इच्छा जगती है कि इसको हम किसी तरह अपने साइड कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ये अर्जुन के मैच का स्किल्ड इंसान है। कर्ण इसके बाद अर्जुन को 1-on-1 कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है और उनके बीच में युद्ध होने ही वाला होता है कि अचानक से कृपाचार्य इंटरप्ट कर देते हैं और कृपाचार्य ये बोलते हैं कि इस बालक का हमें लीनियज नहीं पता, हमें पता भी नहीं है कि ये रॉयल बर्थ का है या नहीं और इससे हम किसी रॉयल प्रिंस की लड़ाई कैसे करवा सकते हैं और ये उचित नहीं होगा कि हम बिना इसके बैकग्राउंड में जाए हम किसी के साथ भी किसी अपने हस्तिनापुर के प्रिंस की लड़ाई नहीं करवा सकते। तो ये सुनते ही दुर्योधन खड़ा होता है और दुर्योधन बोलता है कि अगर सिर्फ इस बात का ही मलाल है कि कर्ण के पास कोई राज्य नहीं है या वो फिर वो कहीं का राजा नहीं है तो हम इसको अंग का राजा बना देते हैं और हम अंग का किंगडम कर्ण को दे देते हैं क्योंकि वो इतना ऑब्वियसली इतना मेधावी और इतना सुपर ह्यूमन है और ज़रूर इसकी लीनेज में कुछ कुछ गॉडलाइक है तो ये इसको हम अंग का राजा बना देते हैं। और कर्ण का वहीं पे कोरोनेशन कर दिया जाता है और कर्ण अंग के राजा बन जाते हैं। अब इसके बाद जब वो राजा बन जाते हैं तो फाइट अर्जुन और कर्ण के बीच में स्टार्ट होने ही वाली होती है कि अचानक से क्राउड में से अधिरथ निकल के आते हैं। अधिरथ कर्ण के पिता हैं, अधिरथ वो हैं जिनने कर्ण को बड़ा किया है। अधिरथ एक रथ चलाने वाले होते हैं जो एक दिन नदी के किनारे बैठे होते हैं और उनको टोकरी में एक बच्चा मिलता है बहता हुआ। चूँकि अधिरथ के खुद के कोई बच्चे नहीं होते और वो बहुत समय से एक बच्चे की इच्छा में पूजा पाठ करवा रहे होते हैं तो उनको ये जब बच्चा मिलता है और वो बच्चा कवच और कुंडल के साथ रहता है, बहुत इंप्रेसिव बच्चा होता है, तो वो उस बच्चे को अपने पुत्र की तरह बड़ा करते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो वो जब आते हैं तो कर्ण उनको देख के बहुत भावुक हो जाता है, और वो कर्ण और वो कर्ण को गले लगा लेते हैं, और वो लोग वो इमोशनल हो रहे होते हैं। तो ये देखकर अचानक से भीम खड़े होते हैं, और भीम बोलते हैं कि अरे ये तो सिर्फ रथ चलाने वाले का बेटा है, और ये डिज़र्व नहीं करता कि अर्जुन के हाथों से मरे भी, और ये कोई राजा नहीं है, और इसको हम राजा कैसे बना सकते हैं, और ये अर्जुन से कैसे फाइट कर सकता है, क्योंकि इसका तो लीनियज ही रॉयल नहीं है, और प्लस चूंकि ये रथ चलाने वाले का बेटा है तो इनको बड़ा इसको भी बड़ा होकर रथ ही चलाना चाहिए। ये सुन के कर्ण को बहुत क्रोध आता है। तभी अचानक से दुर्योधन उनको डिफेंड करने के लिए खड़े होते हैं, और दुर्योधन बोलते हैं कि इसके कवच और कुंडल को देखो, हो ही नहीं सकता कि ये इतने कॉमन लीनियज का हो, और इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेशल है, और इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें ये नहीं पता कि इनका लीनियज क्या है, बट कर्ण ने चूंकि इतनी अच्छी स्किल्स डेमोंस्ट्रेट की हैं यहाँ पे, तो तुम कौन होते हो ये बोलने वाले कि इसका लीनियज रॉयल नहीं है। और वो गुस्से में कर्ण को अपने रथ में बैठा कर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद इंद्र ने चूंकि ये देख लिया होता है कि अर्जुन और कर्ण के बीच की फाइट इनएविटेबल है, और इंद्र चूंकि अर्जुन के पिता होते हैं तो उनको अर्जुन की काफ़ी चिंता होती है, और उनको ये बात पता होती है कि अगर अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हुई तो कर्ण अर्जुन को मार भी सकता है, क्योंकि वह कर्ण इतना पावरफुल रहता है। तो इंद्र एक प्लान बनाते हैं कि वो एक ब्राह्मण के भेष में कर्ण के पास जाएंगे और कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेंगे। कर्ण के बारे में कहा जाता है कि कर्ण इतने दानवीर थे कि कर्ण से कोई भी कुछ भी मांगे तो वो कभी मना नहीं करते थे, स्पेशली जब वो सुबह सूर्य देवता की पूजा करने के बाद वापस जा रहे होते हैं, तो उस समय उनसे कोई कुछ भी मांगता था तो वो बिना सोचे वो चीज़ उसको दे ही देते थे। तो इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए इंद्र ब्राह्मण के भेष में जाते हैं, और जब वो सुबह कर्ण पूजा करके उठ रहे होते हैं तो उस वहाँ से वापस जा रहे होते हैं, तो इंद्र उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम मुझे भिक्षा में अपना कवच और कुंडल उतार के दे दो। अब चूंकि कर्ण को ऑलरेडी पता होता है कि ये इंद्र हैं, और उनको पता होता है कि इंद्र मेरे को ट्रिक करके मेरा कवच और कुंडल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके सपने में आकर सूर्य देवता जो उनके पिता हैं उनको बता देते हैं कि इंद्र तुम्हारे साथ ऐसी ट्रिकरी करने की कोशिश करेंगे। कर्ण को ये बात पता होने के बावजूद चूंकि वो इतना दानवीर होते हैं कि वो अपना कवच और कुंडल निकाल कर उस ब्राह्मण को दे देते हैं। जब वो ब्राह्मण वो कवच और कुंडल लेता है तो वो ट्रांसफॉर्म होके इंद्र देवता बनते हैं और बोलते हैं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम इतने दानवीर हो और तुमने अपने बारे में चिंता किए बिना बिना सोचे मेरे को अपना कवच और कुंडल उतार के दे दिया, तो मैं तुमको एक वरदान देता हूँ, मुझसे जो मांगना है तुम एक चीज़ मांग लो। तो कर्ण उनसे बोलता है कि मैं आपका जो वेपन है शक्ति वो मांगना चाहता हूँ। तो इंद्र बोलते हैं कि ठीक है, और वो अपना वेपन शक्ति उसको दे देते हैं, बट एक कंडीशन पे कि ये तुम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, तुम जैसे ही इसको एक बार यूज़ करोगे ये तुम जिसके ऊपर भी यूज़ करोगे उसकी मृत्यु हो जाएगी निश्चित ही, बट ये एक बार यूज़ करने के बाद ये वेपन मेरे पास वापस आ जाएगा, तो तुम इसका केयरफुल यूज़ करना क्योंकि तुम इसको एक बार ही चला सकते हो। तो कर्ण वो शक्ति वेपन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कर्ण फिर ऋषि परशुराम के पास जाते हैं उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और परशुराम के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रियों को नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। तो कर्ण उनसे ये झूठ बोल देता है कि वो भी एक ब्राह्मण है, और परशुराम के अंडर शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर देता है, और वो उनसे ब्रह्मास्त्र चलाना सीखता है, उनसे स्टेट अफेयर सीखता है, उनसे अलग अलग टाइप का वॉरफेयर सीखता है। और एक दिन परशुराम कर्ण की लैप में अपना सर रख के सो रहे होते हैं, तो अचानक से कर्ण को एक कीड़ा काट लेता है, और कर्ण चूंकि उनकी लैप पे परशुराम सो रहे होते हैं जो कि उनके गुरु हैं, तो वो हिलते नहीं बिल्कुल भी, और उनके पैर से खून निकल रहा होता है बट वो हिलते नहीं। फिर परशुराम की जब नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि अरे इतना खून, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कर्ण उनको बताता है कि एक कीड़े ने काट लिया था, बट चूंकि आप मेरे गोद में सो रहे थे तो मैं इसलिए हिला नहीं। तो परशुराम ये देखकर एकदम से सस्पिशियस हो जाते हैं, और परशुराम उनको बोलते हैं कि हो ही नहीं सकता कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि इतना दर्द सहन करके भी अगर कोई हिला नहीं तो वो पक्का क्षत्रिय है। तो ये जब परशुराम बोलते हैं तो कर्ण उनको सच बता देता है, वो बोलता है कि हाँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो इस बात से परशुराम को इतना क्रोध आता है कि वो बोलते हैं कि तुमने मेरे से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख तो लिया है, बट तुमको अपने जीवन में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्रह्मास्त्र की तुम उस समय इसके मंत्र भूल जाओगे, मतलब तुमको जब एक बार इसको चलाने की सबसे ज़्यादा नीड होगी तुमको याद नहीं आएगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो कर्ण को ये श्राप मिल जाता है, और फिर कर्ण इस श्राप के साथ वहाँ से चले जाता है। Now at this point of the narrative, we'll explore the backstory of Dronacharya. Drona एक ब्राह्मण भरद्वाज के बेटे होते हैं, और वो भरद्वाज के अंडर ही अपनी वेदों और शास्त्रों की विद्या लेते हैं, और अपने आप को आर्चरी में डिवोट कर देते हैं, एंड बिकम्स अ ग्रेट मास्टर एट आर्चरी, इज अ वेरी गुड आर्चर. और वो जो ब्राह्मण भरद्वाज होते हैं उनके अंडर ही जब द्रोण पढ़ रहे होते हैं तो उनके साथ एक और उनका दोस्त पढ़ रहा होता है जिसका नाम होता है द्रुपद. द्रोण और द्रुपद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं. द्रुपद जो पंचाल के राजा होते हैं उनका बेटा होता है, मतलब पंचाल की किंगडम का प्रिंस होता है. तो द्रुपद और द्रोण इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वो फेलो स्टूडेंट्स होते हैं भरद्वाज के अंडर, कि द्रुपद द्रोण को अपने बचपन में ये बोल देता है कि जब मैं बड़ा होकर राजा बनूंगा तो मेरा आधा किंगडम तुम्हारा भी तुम्हारा है, मतलब मैं अपना आधा किंगडम तुमको दे दूंगा. फिर जब द्रोण बड़े होते हैं तो द्रोण की शादी होती है कृपाचार्य की बहन से और उनका एक बेटा होता है अश्वत्थामा. नाउ द्रोण वॉन्टेड टू एक्वायर वेल्थ फॉर द सेक ऑफ हिज सन एंड वाइफ. ही लव्ड हिज सन एंड वाइफ अलॉट. ही डिड नॉट हैव इनफ मटीरियल वेल्थ एंड ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड फॉर देम, सो ही वॉन्टेड टू एक्वायर सम मटीरियल वेल्थ. सो वन डे ही फाउंड दैट परशुराम वॉज गिविंग अवे ऑल हिज वेल्थ. तो ये सुनकर परशुराम के पास द्रोणाचार्य जाते हैं इस होप में कि उनको उनसे कुछ भिक्षा में कुछ वेल्थ मिल जाएगी. और परशुराम अपना सब कुछ देके हर्मिटेज संन्यास लेके फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं. जब परशुराम के पास द्रोणाचार्य पहुँचते हैं, उस समय उनका नाम द्रोण होता है बाय द वे, परशुराम के पास जब द्रोण पहुँचते हैं तो परशुराम उस समय तक अपना सब कुछ ऑलरेडी दान में दे चुके होते हैं. लेकिन परशुराम के पास द्रोण आए रहते हैं इतने दूर से, तो परशुराम द्रोण को यूज़ ऑफ वेपन सिखा देते हैं. द्रोण हु इज़ ऑलरेडी अ मास्टर ऑफ आर्चरी बिकम्स एन अनराइवल्ड मास्टर ऑफ ऑल मिलिट्री आर्ट एंड he becomes very well versed with the Vedas because he was taught by Bharadwaj and he becomes like an unrivaled, like a very prolific warrior also. Meanwhile, जो द्रुपद होता है, जो उनका दोस्त रहता है बचपन का, वो बड़ा होके पंचाल का राजा बन जाता है. तो द्रोण still looking for material wealth, so वो पंचाल के राजा के पास, द्रुपद के पास जाते हैं और उनको वो इस होप में जाते हैं कि वो उनको काफ़ी जनरलिस्टली ट्रीट करेगा. बट वो जब वहाँ पहुँचते हैं, उसके कोर्ट में पहुँचते हैं, तो वो उसको अपने दोस्त की तरह एड्रेस करते हैं और उनको वहाँ पे बहुत ह्यूमिलेशन फेस होता है. द्रुपद उनसे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये प्रिज्यूम कर लेते हो कि हम दोस्त हैं, और हमारे बीच में कैसे दोस्त हो सकती है, मित्रता तो सिर्फ बराबरी के लोगों में होती है, और तुम मैं राजा हूँ और तुम भिखारी हो, और हमारे बीच में दोस्ती बिल्कुल अनुचित है, और तुम यहाँ से चले जाओ. उस ये ह्यूमिलिएशन फेस करने के बाद द्रोण अंदर ही अंदर ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो द्रुपद को सबक ज़रूर सिखाएंगे. नाउ लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, द्रोण इवेंचुअली गोज़ टू हस्तिनापुर एंड स्टार्टेड स्टेइंग विद हिज ब्रदर इन लॉ कृपाचार्य. एक दिन द्रोण वहाँ पे एक कुएं के किनारे खड़े होते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि जो पांडव हैं वो एक गेंद से खेल रहे थे और वो बॉल कुएं में गिर गई. तो वो कुएं में झाँक रहे थे और किसी तरह उस बॉल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, बट वो लोग उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे. और द्रोण ये देख के मनीवन वहाँ साइड में खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं. तो युधिष्ठिर की नज़र द्रोण पे पड़ती है और द्रोण युधिष्ठिर से बोलते हैं कि यू आर डिसेंडेंट्स ऑफ द भारत वंश एंड वाई कैन नॉट यू गेट जस्ट अ मेयर बॉल आउट ऑफ अ बेल एंड शुड आई डू इट फॉर यू. और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अगर आप ये कर देते हैं तो हम ये विल मेक श्योर दैट यू गेट अ गुड मील एट कृपाचार्य हाउस, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि द्रोणाचार्य हैं कौन. तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये गेंद निकाल दूंगा पानी में से. और वो एक घास का तिनका उठाते हैं, उस पर कोई मंत्र पढ़ते हैं और उसको वेल में फेंकते हैं, और कुएं में जाके वो घास का तिनका डायरेक्ट उस बॉल पे लगता है. फिर वो एक दूसरा घास का तिनका उठाते हैं, उस पर भी कोई मंत्र फेंकते हैं, और उसके बाद उसको जब कुएं में फेंकते हैं तो वो दूसरा ब्लेड ऑफ ग्रास पहले ब्लेड ऑफ ग्रास के एकदम एंड पे जाके अटैच हो जाता है. और फिर वो ऐसे करते करते घास के तिनकों से एक पूरी चेन बना देते हैं जो बॉल से कनेक्टेड होती है, और फिर खींच के बॉल निकाल लेते हैं. ये देखकर युधिष्ठिर और सारे पांडव बहुत इंप्रेस होते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. तो इस समय द्रोण बोलते हैं कि तुम वापस जाओ और भीष्म को बताओ कि तुमने क्या देखा, और उनसे पूछना कि मैं कौन हूँ. ये बात सुनकर सारे पांडव और युधिष्ठिर के साथ वो वापस भीष्म के पास जाते हैं और भीष्म को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और एक ब्राह्मण ने इतनी स्किलफुली वो गेंद हमारी कुएं में से निकाल ली. भीष्म ये सुनते ही इमिडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये द्रोण की बात हो रही है, और वो द्रोण को इनवाइट करते हैं और उनको हायर कर लेते हैं कि वो कृपाचार्य के साथ मिलके पांडवों और कौरवों को शिक्षा दें. और इसके बाद से द्रोण का नाम द्रोणाचार्य पड़ जाता है, क्योंकि वो आचार्य बन जाते हैं. तो जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा ख़त्म हो जाती है इन द साइंस ऑफ वॉरफेयर एंड आर्म्स, द्रोणाचार्य कर्ण और दुर्योधन से बोलते हैं कि तुम्हें से मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए, और तुम एक काम करो, तुम जाओ द्रुपद की किंगडम पे अटैक करो और द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने लेकर आओ. द्रोणाचार्य की इस बात को सुनकर कर्ण और दुर्योधन अपनी आर्मी लेके द्रुपद की किंगडम पे अटैक करते हैं, पंचाल की किंगडम पे अटैक करते हैं, बट वो उसको हराने में सफल नहीं होते और हार कर वापस आ जाते हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य अर्जुन को भेजते हैं कि तुम जाओ और द्रुपद को बंदी बना कर लेके आओ। अर्जुन अपनी आर्मी को लेके जाता है और पंचाल के किंगडम पे द्रुपद पे अटैक करता है और उसके सारे मिनिस्टर्स और द्रुपद को बंदी बनाकर वापस ले आता है द्रोणाचार्य के सामने। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अपनी जान की चिंता मत करो और हम तो दोस्त हुआ करते थे, बट तुमने ही मेरे से कहा कि बराबरी के लोगों में ही दोस्ती हो सकती है और मित्रता एक भिखारी और एक राजा में कैसे हो सकती है, बट अब चूंकि हमने तुमको हरा दिया है और तुम्हारा पूरा किंगडम मेरा है, अब मैं राजा हूँ और तुम भिखारी हो, तो हमारे में मित्रता नहीं हो सकती, बट मैं चाहता हूँ कि हमारी मित्रता कंटिन्यूड रहे, तो इसलिए मैं अपना आधा किंगडम तुम्हारा ही से जो जीता हुआ तुम्हारा आधा किंगडम तुमको वापस कर देता हूँ ताकि हम वापस बराबर के लेवल पे आ जाएं और फिर हम अपनी मित्रता कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यह कहकर द्रुपद को वो उसका आधा किंगडम लौटा देते हैं और उसको छोड़ देते हैं जाने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद द्रुपद का प्राइड बहुत हर्ट होता है और वो मन में ठान लेता है और उसकी ज़िंदगी का इसके बाद से एक ही मकसद होता है, बदला। और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं द्रोणाचार्य से इस बात का और इस ह्यूमिलिएशन का बदला ज़रूर लूँगा, और वो अपने पावर में जो भी होता है वो व्रत रखता है, वो सैक्रिफाइसेस करता है, बहुत सारे यज्ञ ऑर्गेनाइज कराता है, सिर्फ एक रीज़न से कि वो चाहता है कि उसके बच्चे ऐसे हों जिसमें जो उसका पुत्र हो वो द्रोणाचार्य को इवेंचुअली मारे और जो उसकी पुत्री हो, जो उनकी बेटी पैदा हो, वो अर्जुन से शादी करे। इसलिए वो इस वरदान के लिए हर जगह घूमते हैं और फिर इवेंचुअली द्रुपद के 3 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक होता है धृष्टद्युम्न हु इज़ डेस्टिन्ड टू इवेंचुअली किल द्रोणाचार्य, एक होती है द्रौपदी हु इवेंचुअली मैरीज अर्जुन, और एक होती है शिखंडिनी। और शिखंडिनी की स्टोरी हम आपको बाद में बताएंगे अप्रोप्रिएट टाइम पे। अब हम इस कहानी में थोड़ा विराम लेंगे और अभी तक के जो मेजर प्लॉट पॉइंट्स थे वो डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि उसमें से क्या क्या ऐसे मॉरल डिलेमास हैं जिस पर डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो बताइए।
अच्छा, बड़ा तो ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा जो महाभारत ऐसे टाइम्स में है कि पूरा मॉरल जो फ्रेमवर्क है उस टाइम का वही अलग है, तो हमारी जो अभी की जो ऐसे सही गलत का जो आइडिया है उससे हमें नहीं सोचना चाहिए इतना।
उसमें मॉरल डिलेमा जो है वो तो रेलेवेंट है ना आज के टाइम में भी, कि काफी टाइम स्टोरीज में 2 ऑप्शन रहते हैं जो कि दोनों ही इक्वली ऑब्जेक्टिवली सही लगते हैं और एक को चूज करोगे तो दूसरे के साथ गलत हो जाएगा।
हाँ।
बट करते ही है,
जैसे कई जगह पे ऐसा हुआ है कि जैसे जब भीष्म को अंबा के बारे में पता चलता है, भीष्म के पास मतलब भीष्म के इंटेंशंस खराब नहीं होते हैं अंबा के टुवर्ड्स, बट भीष्म ने चूंकि ऑलरेडी प्रतिज्ञा ले ली होती है कि मतलब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, तो वो उस समय भी हेल्पलेस होते हैं ना कि वो क्या करें, तो वो इसलिए अंबा को जाने को बोल देते हैं। साल्या ने चूंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत किया कि अंबा को एक्सेप्ट नहीं किया, वो उस समय के स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना प्राइड को उसने ज्यादा वेटेज दी एज कम्पेयर टू उसने जिसको बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
नहीं, बट साले को ये नहीं पता था ना कि भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है, तो साले के पर्सपेक्टिव से तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, जबकि भीष्म पितामह ने जबरदस्ती करके गलत किया।
बट वो किसी को स्वयंवर से उठाना तो एक्सेप्टेबल था ना, और अंबा ने भी पहले नहीं बोला ना जब वो जा रहे थे रथ में कि मेरे को नहीं जाना, या बोला भी होगा क्या मालूम। हाँ, तो वो तो चलो ठीक है, भीष्म पितामह की
शक्ति प्रदर्शन किया,
भीष्म पितामह ने अपने आइडियल्स को नंबर 1 पे रखा पूरी लाइफ कि हाँ ठीक है मेरा अलीजेंस कौरवों की तरफ है, मैं इस यहाँ का पितामह हूँ इस साम्राज्य का, और मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इसको उनने कभी नहीं छोड़ा। बट वो इसकी वजह से पूरी लाइफ एगनी में भी तो रहे भीष्म पितामह की, तो लाइफ सबसे ज्यादा ट्रेजिक है।
तो ये मतलब आज से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक रहना इसलिए आज के टाइम में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसने आगे नहीं आया। ये तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि कुछ भी सही करने जाओ तो थोड़ा कटता है ही।
हाँ, मतलब तुम अपना एक कोई आइडियल डिसाइड कर लो चाहे वो कितना ही अच्छा हो, तुमको मॉरल कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते हैं उसकी वजह से, बाकी चीजों जो कि तुमको लगता है कि ऑब्जेक्टिवली सही नहीं है, बट चूंकि तुमने ओवरऑल एक बेटर गुड के लिए कुछ, अगर मतलब वही है ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए वाला सिस्टम,
ट्रुथ एक चीज के लिए वो भी चेंज होती है ना टाइम के साथ, कि कंडीशंस के साथ चीजें बदल सकती है ना।
बट कहानी का पॉइंट ये है ना कि कहानी में अगर अपने कैरेक्टर ट्रेट्स को डिफाई करने लगे ना सारे कैरेक्टर,
तो फिर ये एक प्योर केस स्टडी नहीं रह जाएगी। महाभारत का अपील ये है ना कि कोई जिसका जो डिफाइनिंग ट्रेट है ना वो उस ट्रेट से नहीं हटता कभी भी। जैसे भीष्म ने ये डिसाइड कर लिया तो कर लिया, वो पूरे टाइम वही करेंगे। युधिष्ठिर जो युद्ध में भी स्थिर रहे, वो युधिष्ठिर तो उनने वो अपना डिफाइनिंग ट्रेट कभी नहीं बदला। लोगों के कैरेक्टर वो रियल लाइफ में होता है, बट एक कंस्ट्रक्ट में जहां पे तुम एक कहानी लिख रहे हो वो अपना मेन कैरेक्टर कभी अपना कैरेक्टर ट्रेट चेंज नहीं करता। उसके ही तो कॉज एंड इफेक्ट दिखा रहे हैं वो कि
शायद इसलिए बहुत सही कहानी भी है क्योंकि तुम्हें हर कैरेक्टर का एक मिल जाएगा ऐसे
रिलेटेबल।
हाँ, रिलेटेबल
हर इस सिचुएशन में लाइफ में तुमको एक कैरेक्टर मिल जाएगा कि वो कैरेक्टर कैसा रिएक्ट करता है।
बट सत्यवती की फार साइडेडनेस को तो कोई डिफाई कर ही नहीं सकता।
हां भाई, सत्यवती ने तो क्या गेम खेला, वेरी नाइस। सत्यवती के पिताजी ने, मतलब सत्यवती ने खुद तो नहीं,
बट सत्यवती मैं बार बार जाके भीष्म पितामह के फेवर मांग मांग के। और आयरनी ये है कि सत्यवती ने भीष्म पितामह को बोला कि आप मेरे बच्चे राज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप मतलब हैं थ्रोन के थ्रोन आयर है। बट आयरनी है कि उनके बच्चे कभी राज करते ही नहीं होता। भीष्म पितामह पूरे टाइम किंगडम रन करते हैं क्योंकि उनको ऐसे सुडो रन करना पड़ता है, बट क्योंकि उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं जल्दी और वो खुद कर नहीं पाते हैं।
मतलब उसका भी कोई, हाँ उसका भी कोई उनको मतलब वो नहीं मिलता रिवॉर्ड। उससे बस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है स्टोरी में। भीष्म पितामह को इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है बट उसका कोई डायरेक्ट मतलब बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलता। महाभारत में एक ये रिकरिंग थीम है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो इवेंचुअली कोई जीतता हारता नहीं है। इवन एट द एंड ऑफ महाभारत जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो मैं हाईलाइट ये करूंगा कि देखना इवेंचुअली महाभारत में इतना कुछ हुआ बट कोई ऐसे डिसर्नेबल पॉइंट नहीं रहा कि मतलब कोई जीता नहीं, कोई खुश नहीं हुआ इस लड़ाई
से। और वैसे देखा जाए तो अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं अभी तक स्टोरी में, एक तो सत्यवती और भीष्मा तो है क्रूशल, एक दूसरा फैन फेवरेट करना तो रहेगा ही रहेगा।
कर्ण तो मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, ठीक है। कर्ण को किसी ने कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया अपनी उसकी पूरी लाइफ। उसने कुछ भी गलत काम किए तो उसकी अलीजेंस भी तो देखो कि उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। वो इतना सूर्य पुत्र है कर्ण, ठीक है, अर्जुन से ज्यादा ताकतवर है बट उसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। तो दुर्योधन ने उसको अपनी लाइफ में पहली बार रिस्पेक्ट दी तो उसने दुर्योधन के लिए जो करना था किया, वो अपने धर्म से नहीं भटका। उसने अपनी अलीजेंस डिसाइड कर ली कि दुर्योधन ने जो भी है मेरे पास सब दुर्योधन का दिया हुआ है तो मैं दुर्योधन की सेवा करूंगा जो भी हो जाए। तो इसलिए मेरे को कर्ण मतलब काफी,
कर्ण थोड़ा ऐसे सोशल कमेंट्री वाला कैरेक्टर है कि पूरा बनाया है इसलिए कि ऐसे वो क्लास जो बायस है वो पूरा बताया जाए, सोसाइटी में क्या क्या फ्लॉज है वो वाला जो सोसाइटी का पैराडाइम है वो पूरा एक्सप्लेन कर सके
कि मतलब तुम अपने सोसाइटल शैकल्स तोड़ के अगर इस लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ तुम राजाओं के साथ बैठे हो उसके बावजूद तुमको बुरा कैरेक्टर जज किया जा रहा है क्योंकि तुमने गलत राजा के साथ अलीजेंस। बट अच्छे राजा ने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया ना। भीम ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि ये तो रच्चा लाने वाला बेटा है, इसको रच्चा लाना चाहिए। तो उसके पर्सपेक्टिव से देखो तो ये लोग विलेंस है ना उसकी लाइफ के, भीम और अर्जुन और ये लोग।
मतलब बट ये चीज कितनी वो है, मतलब ऐसे डिस्टर्बिंग है कि अगर कोई बता देता आपके स्टोरी में कि कुंती बोल देती है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा है तो डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं, तो फिर उसको राजा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट टू गिव हिम, जस्ट टू मेक हिम एंटाइटल्ड फॉर समथिंग। मतलब यू नीड टू अर्न इट बाय वर्च्यू ऑफ सम टाइटल।
हां मतलब वो सब वर्थ पे डिसाइडेड है तुम्हारी, तुम कहां पे।
मतलब ये तो इतना वो था कि वो तो वर्थी भी था, उनके रूल ऑफ लॉ के हिसाब से भी वो वर्थी था, ही वाज अ सन ऑफ गॉड, डेमी गॉड था। उसके बावजूद जो ह्यूमन जो अनआइडियल जो बिहेवियर होता है जैसे कुंती ने छुपाए उसकी वजह से वो सफर कर रहा था। मतलब हर एनी वे उसको सब मिलना चाहिए था, ठीक है।
मतलब वो ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ रथ वाले का रथ का किसी का, वो तो भगवान का, मतलब वो तो सूर्य पुत्र था ना। और इतनी सब कुछ स्किल होने के बाद हर चीज में किसी भी राजा से बेटर होने के बावजूद वो सिर्फ कंस्ट्रेंट अपनी बर्थ से था। मतलब वो कहाँ पैदा हुआ और किसके साथ बड़ा हुआ इससे उसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन हुआ। और उसको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी। द्रौपदी उसका लेफ्ट राइट सेंटर मजाक उड़ाती है, भीम उसको इतना ह्यूमिलिएट करता है, अर्जुन ने तो उसको ढंग से देखा भी नहीं कभी, वो अर्जुन हमेशा ही उसका एनिमी रहा पूरे टाइम। द्रोणाचार्य ने उसको कभी वो नहीं मारा, परशुराम ने भी उसको भगा दिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा नहीं। इंद्र ने उसका कवच कुंडल ले लिया, और जब वो मरता है तो वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, बट वो भी ट्रिकरी से ही मरा। तो कर्ण के साथ कहाँ कुछ अच्छा हो? तो कर्ण को जज करने वाले कौन होते हैं?
पर कर्ण बोलते हैं कि वो पांडवों में से उनकी जो बेस्ट ट्रेड्स होती है वो मिक्स करके वो बंदा बनता है। ही इज द आइडियल लिस्ट ऑफ पांडवस, ठीक है?
तो दिस द बेस्ट ऑफ पांडवस।
धर्म स्थिर होता है, अर्जुन का स्किल होता है, भीम का पावर होता है, नकुल सहदेव का वो इंटेलिजेंस और लुक्स भी होता है, वो बहुत
अच्छा दिखता है। एक वो अंधे पेरेंट्स वाला मेटाफर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि
हाँ वो तो है,
धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे, मतलब वो अंधे तो थे बट वो पुत्र मोह में भी अंधे थे, मतलब उनको अपने बच्चों से इतना प्यार था कि वो उनके दिमाग पे भी पर्दा पड़ गया।
गांधारी होती है वो भी just because her husband is blind, वो खुद भी becomes blind to everything that is visible in the world. उसके पास power भी होता है, मतलब ऐसे मान लो कि वो capable होती है, but वो खुद के पैर काट देती है and to lower herself
standard
to to her husband's standards, ऐसा उसको बुरा ना लगे या society को बुरा।
मतलब धृतराष्ट्र by birth नेत्रहीन होते हैं, बट उनके जो दिमाग पे जो अंधापन आता है, जो दिमाग पे उनका पर्दा पड़ता है, वो पुत्र मोह में होता है। इसलिए आजकल वो कहावत है ना कि पुत्र मोह में अंधा होना, कि अपने बेटे के पैर में तुम इतने अंधे हो कि तुमको उसकी बुरी चीजें भी नहीं दिख रही, तो वो धृतराष्ट्र उसका एम्बॉडीमेंट है। गांधारी को, जबकि बहुत सारी चीजें एट डिफरेंट टाइम्स इन द स्टोरी गांधारी ने बहुत वॉइस ऑफ रीजन रही है वो धृतराष्ट्र की लाइफ में, बट धृतराष्ट्र एकदम ही बदल जाते हैं। प्री कौरवों के पैदा होने के पहले जो धृतराष्ट्र का कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, उन्होंने स्टेट अफेयर्स सब अच्छे से चलाए, सब कुछ अच्छा किया, कुछ मतलब इल विल नहीं रखी पांडु के तरफ, पांडु के फैमिली की तरफ। बट दुर्योधन के पैदा होने के बाद से ही एकदम बदल जाता है, मतलब वो फिर सही में अंधे हो जाते हैं।
पर मेरे को दुर्योधन और कर्ण की जो फ्रेंडशिप होती है ना, वो इट्स मतलब रियल ब्रोमांस। वो टीवी शो में भी हर 5 सेकंड में हग कर रहे होते हैं, वो ब्रो एकदम रो लेते हैं मेरे मित्र भाई अलग ऐसे
क्योंकि हाँ यार मतलब
वेरी होलसम, मतलब
वेरी होलसम दैट ओजी ओजी ब्रोमांस।
मतलब इतना प्यार मुझे पांडवास के बीच में भी नहीं दिखता जितना प्यार उन दोनों के बीच में, सही में मतलब
एक दूसरे के लो में उठाए ना उन दोनों।
मतलब कर्ण के सबसे लो पे दुर्योधन ने उसको सपोर्ट किया होता है, दुर्योधन ने ही सब कुछ दिया होता है कर्ण को, तो कर्ण का तो बनता है दुर्योधन से बहुत अटैच हो।
So that brings us to the end of the first episode. This episode covers about 15 to 20% of the entire narrative of the Mahabharat. We plan to record and upload more episodes in order to cover the entire story. If you did not like anything about this episode or have any other comments in general, please let us know. And yeah, thank you.